ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। संघीय संसद की प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा की बैठक में आगामी आर्थिक वर्ष के लिए आवंटन बजट के सिद्धांत और प्राथमिकताओं पर चर्चा शुरू। जेठ 2 से 4 गति तक काठमांडू में होने वाले सगरमाथा संवाद में 12 देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल सहित विभिन्न देशों के 175 लोगों की होगी सहभागिता। सगरमाथा संवाद विश्वव्यापी मंच का एक महत्वपूर्ण अवसर है। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देउबा का कथन, डाक बचत बैंक की रकम में अनियमितता के आरोप में अख्तियार द्वारा जिला डाक कार्यालय 12 के तत्कालीन प्रमुख जयलाल प्रसाद साह के खिलाफ मुकदमा दर्ज। और गाजा में अकाल और मानवीय संकट का खतरा बढ़ रहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। संघीय संसद में आज से आर्थिक वर्ष 2082-83 के लिए आवंटन बजट के सिद्धांत और प्राथमिकताओं पर चर्चा शुरू हुई। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में नेपाली कांग्रेस के सांसद ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की ने कहा कि सरकार ने बिजली निर्यात, पर्यटन विकास, सूचना प्रविधि के उपयोग आदि पर जोर देकर बजट पेश किया है। चर्चा में नेकपा एमाले के सांसद गोकर्ण विष्ट ने कहा कि आर्थिक असमानता को समाप्त करते हुए संविधान द्वारा परिकल्पित समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए न्यायसंगत वितरण पर आधारित बजट पेश किया जाना चाहिए। नेकपा माओवादी केंद्र के सांसद शक्ति बहादुर बसनीत ने कहा कि सार्वजनिक, निजी और सहकारी क्षेत्र की भागीदारी और विकास सहित योजनाबद्ध एवं समावेशी विकास का मॉडल आज की आवश्यकता है और सरकार को इसके अनुरूप बजट लाना चाहिए। इसी चर्चा में रासोपा के सांसद मनीष झा ने कहा कि सरकार की नीतियों में असंगति के कारण खर्च बढ़ा है और इसमें सुधार के लिए एकीकृत योजना और एकीकृत बस्ती विकास पर बजट केंद्रित होना चाहिए। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में सांसदों ने आगामी आर्थिक वर्ष 2082-83 के लिए आवंटन बजट के सिद्धांतों और प्राथमिकताओं पर चर्चा के दौरान बजट निर्माण प्रक्रिया में संसद की भूमिका मजबूत करने और सांसदों के सुझावों को शामिल करने पर जोर दिया। सांसदों ने संसद में उठाए गए मुद्दों को ध्यान में रखते हुए बजट तैयार करने की मांग की। उप प्रधान एवं अर्थमंत्री विष्णु प्रसाद पौडेल द्वारा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष के बजट के सिद्धांतों और प्राथमिकताओं पर चर्चा में सांसदों ने कहा कि सरकार को संसद में वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम और बजट के सिद्धांत कम से कम 3 महीने पहले पेश करने चाहिए ताकि पर्याप्त विचार विमर्श हो सके। चर्चा के दौरान सांसदों ने बजट में कर का दायरा बढ़ाने, खर्च में मितव्ययिता बनाए रखने, घरेलू उत्पादन बढ़ाकर रोजगार सृजन पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने निर्माणाधीन परियोजनाओं को प्राथमिकता देने, प्रदेश और स्थानीय तह की भूमिका मजबूत करने, सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कार्यक्रम लाने और सिंचाई परियोजनाओं को प्राथमिकता देकर खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता की दिशा में काम करने की मांग की। सांसदों ने क्रियान्वयन योग्य बजट बनाने, केवल वित्तीय स्रोत सुनिश्चित परियोजनाओं को शामिल करने, निजी क्षेत्र का मनोबल बढ़ाकर निवेश मित्र वातावरण बनाने, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों को व्यवस्थित और लक्षित समूह पर केन्द्रित करने तथा गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने का आग्रह किया। बैठक के शून्यकाल में सांसदों ने निर्माणाधीन विकास परियोजनाओं को समय पर पूरा करने की मांग के साथ ही उन्होंने भारत पाकिस्तान तनाव जैसी स्थितियों का बहाना बनाकर दाल सब्जी सहित दैनिक उपभोग्य की वस्तुओं की कीमतें बढ़ाए जाने पर नियंत्रण लाने, बाजार निगरानी करने और विदेशों में फंसे नेपाली श्रमिकों की स्वदेश वापसी के लिए पहल करने जैसे मुद्दों पर सरकार का ध्यान आकर्षण कराया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक 31 बैसाख बुधवार दोपहर 1:15 बजे के लिए बुलाई गई है। सरकार द्वारा 2 से 4 जेठ तक काठमांडू में आयोजित किए जा रहे सगरमाथा संवाद में विभिन्न देशों के 175 विदेशी अतिथि भाग लेंगे। परराष्ट्र मंत्रालय में आज आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारी देते हुए बताया गया कि 12 देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडलों सहित 61 से अधिक विकास सहायता संस्थाओं, विश्वविद्यालयों, शोध केंद्रों, नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। परराष्ट्र मंत्री डॉ राजू राणा देउबा ने कहा कि ये संवाद वैश्विक मुद्दों पर नेपाल की प्रतिबद्धताओं को उजागर करने और सहयोग व साझेदारी विकास कर विश्व में देश की छवि को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। डॉ राणा ने जोर देकर कहा कि सगरमाथा संवाद न केवल नेपाल बल्कि सभी राष्ट्रों के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि संवाद के पहले संस्करण की थीम जलवायु परिवर्तन, पर्वत और मानवता का भविष्य रखी गई है, जिसमें 3 देशों तक 6 प्रमुख विषय पर गहन चर्चा होगी। परराष्ट्र मंत्री ने यह भी सूचित किया कि इस बहुस्तरीय बहुपक्षीय संवाद के निष्कर्षों के आधार पर काठमांडू घोषणा पत्र जारी किया जाएगा। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि *1415# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि सिनेपा नामक अत्याधुनिक इंडोर फिल्म शूटिंग स्टूडियो का निर्माण शुरू होना नेपाली सिनेमा जगत के लिए क्रांतिकारी घटना है। बालवाटार स्थित प्रधानमंत्री निवास में आज फिल्म विकास बोर्ड द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि अब कावरे प्लान चौक के बनेपा में भी एक स्टूडियो बनाया जाएगा जो फिल्म उद्योग की मांगों को पूरा करेगा। उन्होंने कहा कि ये प्रक्रिया फिल्मकारों द्वारा लगभग 6 दशक से उठाई जा रही मांगों का समाधान है। इस अवसर पर उपस्थित संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री और सचिव का ध्यान आकर्षित करते हुए प्रधानमंत्री ओली ने 10 दिनों के भीतर बालाजो स्थित नेपाल फिल्म विकास कंपनी की जमीन अवचलन मामले की जांच कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश किया। अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग ने जिला डाक कार्यालय 12 के तत्कालीन प्रमुख जयलाल प्रसाद शाह सहित अन्य 6 लोगों के खिलाफ 5,35,64,000 रूपये की सार्वजनिक संपत्ति के दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का मामला विशेष अदालत में दायर किया है। आरोपियों ने डाक बचत बैंक से जमाकर्ताओं की रकम का अनियमितता लेन देन किया और रिकॉर्ड में हेराफेरी की। जमाकर्ताओं के पासबुक और लेजर में तो राशि दर्ज की गई लेकिन कार्यालय के रजिस्टर में नहीं रखी गई। बैंक में जमा राशि को अनियमित तरीके से बांटकर गबन किया गया। जांच में पाया गया है कि अधिकारियों ने बचतकर्ताओं के पैसे का सही हिसाब न रखकर गबन किया। सूचना प्रविधि का सावधानी पूर्वक प्रयोग करने की बात पर सरोकार वालों ने जोर दिया है। आज राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित विद्युतीय माध्यम से होने वाली लैंगिक हिंसा न्यूनीकरण अंतर्क्रिया में सरोकार वालों ने कहा कि सूचना प्रविधि के कारण कई तरह के आर्थिक और मानसिक तनाव भोगने पड़े हैं, इसलिए इसका प्रयोग सावधानीपूर्वक किया जाना चाहिए। मौके पर महिला आयोग की अध्यक्ष कमला पराजुली ने भी अपने विचार रखे। प्रविधि शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद CTEVT ने SEE में प्राप्त GPA अंक के आधार पर विद्यार्थियों का दाखिला लेने का फैसला लिया है। बता दें कि पहले यहां प्रवेश परीक्षा यानी एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर एडमिशन लिया जाता था लेकिन अब GPA के आधार पर ही एडमिशन लिया जाएगा। CTEVT के परीक्षा नियंत्रक उमेश मिश्र ने कहा कि कई पूर्व तैयारी कक्षा चलाने वालों के विद्यार्थियों से मोटी रकम वसूलने की शिकायत भी आई थी लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि गाजा पट्टी में अकाल और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर जोखिम बढ़ता जा रहा है। संगठन ने कहा है कि युद्ध भोजन की कमी, स्वच्छ पानी का अभाव और चिकित्सा सुविधाओं के ध्वस्त होने के कारण लाखों लोगों की जान खतरे में है। भूखमरी का खतरा संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार गाजा की 90% से अधिक आबादी भोजन की गंभीर कमी का सामना कर रही है। असुरक्षित पानी और खराब स्वच्छता व्यवस्था के कारण डायरिया, हैजा और अन्य संक्रामक रोग फैल रहे हैं। अस्पतालों पर लगातार हमलों और दवाइयों की कमी से गंभीर रोगियों का इलाज नहीं हो पा रहा है। युद्ध के कारण बच्चों और महिलाओं में तनाव, डर के मामले बढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की जा रही है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 31.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.2 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। संघीय संसद की प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा की बैठक में आगामी आर्थिक वर्ष के लिए आवंटन बजट के सिद्धांत और प्राथमिकताओं पर चर्चा शुरू। जेठ 2 से 4 गति तक काठमांडू में होने वाले सगरमाथा संवाद में 12 देशों के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल सहित विभिन्न देशों के 175 लोगों की होगी सहभागिता। सगरमाथा संवाद विश्वव्यापी मंच का एक महत्वपूर्ण अवसर है। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देउबा का कथन। डाक बचत बैंक की रकम में अनियमितता के आरोप में अख्तियार द्वारा महिला डाक कार्यालय बारा के तत्कालीन प्रमुख जयलाल प्रसाद शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज और गाजा में अकाल और मानवीय संकट का खतरा बढ़ रहा है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की चेतावनी रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार नमस्कार शुभरात्रि